تفسير سورة الحج آیت نمبر 25 سے لے کر 37 تک اللہ رب العزت نے اصل ملت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کے بارے میں اور بیت اللہ کے جو مقاصد تھے اس کی تعمیر کے اس کی وضاحت کی ہے. تو نمبر ایک ملت ابراہیم کی وضاحت, نمبر دو بیت اللہ کیوں تعمیر کیا گیا, نمبر تین مشرقین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو کس طرح مسخ کیا, وہ کیسے شرک کرنے لگے, اور نمبر چار مشرقین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو زندہ کرنے والے جو تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو تھے ان کو حرم میں داخل ہونے سے روکا. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں پر جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے. آئیے اسے پڑھتے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. تو یہ کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے جو تھے انکار کر رہے تھے؟ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ویصدون عن سبیل اللہ, اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. صد یصدو رکنا بھی اور روکنا بھی, یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو منکرین ہیں اب یہاں پہ ان کا کردار جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا, نمبر دو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. تو سبیل اللہ سے مراد دین اسلام ہے, کہ یہ لوگ خود بھی اسلام سے دور رہتے ہیں دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں. یصدونا کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. نمبر تین والمسجد الحرامی, اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں, اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں. اور مسجد حرام جو ہے اس کو کس لیے تعمیر کیا گیا تھا؟ الذی, جس کو جعلناہ, ہم نے بنایا, یعنی مسجد حرام جسے بنایا ہم نے, للناسی, لوگوں کے لیے, سواء جو ہے سین و یا اس کا روٹ ہے برابر رہنے والا. تو وہ مسجد حرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ برابری پر بنایا, برابر رہنے والا, یعنی جس میں لوگوں کے لیے برابر حقوق ہیں. العاقف فیہ عین قاف فا, اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے جم جانا, ہر ایک سے کٹ کر ایک طرف لو لگانا. تو عین قاف فا جو ہے اس کے معنی ہے برابر رہنے والا. عاقف, عاقف جو ہے یہ باشندے کو کہتے ہیں, جو کہیں جو ہے وہ مقیم ہوتا ہے تو اس کے لیے عاقف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. فرمایا کہ العاقف برابر رہنے والے, جیسے کوئی کہیں کا شہری ہوتا ہے نا اور مستقل وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی عاقف کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ لوگ برابر رہنے والے ہیں. فی, یہاں پر, یعنی مقامی باشندے. عاقف سے مراد مقامی باشندے ہیں جو مستقل وہاں پہ رہ رہے ہیں. والبادی, باد جو ہے اس کا روٹ ہے با دال و, بدو جو ہوتے ہیں نا باہر سے آنے والے. تو کچھ تو حرم کے اور مکہ کے اندر رہتے تھے اور کچھ جو تھے وہ ارد گرد کے علاقوں سے آتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام کو ہم نے بنایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بنوایا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ تعمیر کیا. اور اس میں حرم کے اندر رہنے والے جو مقامی باشندے ہیں العاقف, ان کے حقوق, والبادی, اور جو باہر کے علاقوں سے آنے والے ہیں, خواہ وہ مکہ کے بدو ہیں یا جیسے دور دور کے ممالک سے آنے والے لوگ, تو ان سب کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہے. لیکن اہل مکہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو پہلے تو حرم سے نکلنے پر مجبور کر دیا, اور پھر نمبر دو کیا کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں پہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ روکا. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ جو ہیں مسجد حرام کی زیارت سے روک رہے ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ, اور جو ارادہ کرے اس میں, بِالْحَادٍ, ٹیڑے راستے کا. الحاد جو ہے لام حا دال جو ہے इसका रूट है और इसके मानी होते हैं कि सीधे रास्ते से हट जाना। इसीलिए लहत कब्रे कब्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो अंदर जैसे थोड़ी टेढ़ी करके होती है, यानी मुर्दे को बिल्कुल सीधा अंदर रखने की बजाय उसकी जो बगली होती है यानी बीच में जमीन के अंदर जो है वो बनाकर फिर उसके अंदर उसको डाला जाता है। तो मुलहिद कौन होता है? जो दीन को छोड़ देता है, इल्हाद। तो यहां पर फरमाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि इल्हाद करने वाले हैं, ये टेढ़े रास्ते पर हैं, बेजुल्मिन शरारत के साथ। नुज़िक़ु, हम इनको चखाएंगे, मिन अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब का मजा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि और जो कोई भी इसमें शरारत करेगा, जो कोई भी इसमें जुल्म करेगा और लोगों को हरम में आने से रोकेगा, तो हम जो है इन्हें दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर जो कुफ्र करने वाले हैं और यहाँ पर उनका उनके गुनाह भी बताए जा रहे हैं, उनका तर्ज अमल भी बताया जा रहा है और साथ ही उनको उनके दर्दनाक अंजाम से डराया जा रहा है। और मस्जिद हराम से मुराद खास बैतुल्ला है और उसका इर्द गिर्द का सारा इलाका जो कि हरम का इलाका कहलाता है, यानी खाना काबा और फिर सारा जो इलाका जो हरम का इलाका कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि किसी का ये हक नहीं बनता कि वो बैतुल्ला में लोगों को आने से रोके या वहां पे इबादत से रोके, इसमें सबके हकूक बराबर है। तो इसीलिए मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वहां पे जो है वो यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग जो हैं वहां पे आकर अल्लाह की इबादत ना कर सकें या वहां पर जो है वो एहराम बांधकर हज ना कर सकें या उमरा ना कर सकें। तो इसी तरह मुफस्सरीन तो यहां तक भी कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं और अगर वहां पे वो बहुत ज्यादा कराए रख देते हैं या मुख्तलिफ तरीके से लोगों को वहां पे आने से रोकते हैं, तो ये भी इसकी तारीफ में जो है वो आता है। जैसे वो है ना कि इर्द गिर्द हज या उमरे के मौसम में लोग जो है मकानात के किराए बहुत ज्यादा रख देते हैं, तो बाहर से आने वालों को फिर इस तरह से जो है वो मुश्किल होती है। तो बल्कि जो थे वो सहाबा जो थे वो इस बात का इहतमाम करते थे कि हज के मौसम में और उमरे के दिनों में बाहर से आने वालों की मेहमानदारी करें और किराया ना लें। और जैसे आजकल के दौर में देखें तो अब वहां पे जो है खूब खूब किराया जो है वो लूटा जाता है, किराया जो है वो लिया जाता है। तो इस तरह लोगों के लिए जो है वहां का वहां की ज्यारत करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे असल में तो कुफारे मक्का को जो है वो मना किया जा रहा है और उसके साथ इसमें फिर वो तमाम ऐसी पाबंदियां आ जाती हैं कि जिसके जरिए जो है वो हरम की जियारत से लोगों को जो है वो रोका जाए, खा ये पाबंदियां अपने लगाएं या फिर जो है वो गैर लगाएं। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में हजरत सफवान बिन उमैया का मकान मक्का में जेल की तामीर के लिए 4000 दिरहम में खरीदा गया था और जो है वो वहां पे फिर जो है उसको इबादत के लिए जो है वो मखसूस कर दिया गया। और इसी तरह जो है वो एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औलादे अब्दे मनाफ, तुम में से जो कोई लोगों के मामलात पर किसी इक्तदार का मालिक हो उसे चाहिए कि किसी शख्स को रात और दिन के किसी वक्त में भी खाना काबा का तवाफ करने या नमाज पढ़ने से मना ना करे। अच्छा, फिर आप इसमें भी देखें कि वहां पे फिर हरम के जो है वो हरम में इबादत करने के नमाज पढ़ने के आदाब हैं। बाज लोग पंजाबी में कहते हैं जगह मल कर बैठ जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि ये फलां की जगह है, लेट जाते हैं, सामान बहुत रख लेते हैं। और बाज लोग जो है वो जैसे वो हजरे अस्वद के लिए धक्कम पेल करते हैं या वहां पे जैसे किसी की चीज है तो बड़ी भी चीज को उठा लेना, चुरा लेना। तो ये सारी चीजें भी जो है वो हरम के अंदर आने वालों के लिए क्या है कि उनको तंग करना है, उनको सताना है। तो ये चीजें जो है वो जायज नहीं है वहां पे गिरी पड़ी चीज उठाना भी ममनू है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हाजियों की गिरी पड़ी चीज उठाने से मना फरमा दिया था। फिर इसी तरह जैसे आप देखती हैं कि हरम के बाहर कितने परिंदे वगैरह होते हैं, तो उसको भी उनको भी जो है वो मारना जो है वो मना किया गया है। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यानी इसमें सबके हकूक जो है वो बराबर है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। फिर अब आगे आयत नंबर जो है वो 26 से अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि बैतुल्ला जो था उसको तामीर करने के मकासिद क्या थे, और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसका जो है वो हुक्म दिया था। वाइज बव्वाना ये इब्राहिम, याद करो वक्त जबकि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आबाद किया था। तो बा व हमजा इसके मानी होते हैं किसी को ठिकाना और रहने का मकान देना, किसी को आबाद करना। वाइज बव्वाना ले इब्राहिम कि जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आबाद किया था, मकानल बेती इस घर में, इस घर की जगह इब्राहिम के लिए तजवीज की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुराद है खाना काबा। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने बैतुल्ला का ठिकाना अता किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? शाम से हिजरत करके यहाँ पर तशरीफ लाए थे, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाम से हिजरत करवाई थी। और मुफस्सरीन कहते हैं कि सबसे पहले खाना काबा को तामीर करने वाले जो हैं ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब यहाँ पे फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र किया जा रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब खाना काबा का ठिकाना अता किया तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिए? पहला हुक्म दिया कि अल्ला तुशरिक बी शैयन, कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। तो शरीक ना करना इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि जो है वो बुत शिकनी नहीं करनी, शिर्क नहीं करना, शिर्क से परहेज करना है। तो मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। और खाना काबा जो है, अब आप देखें कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफिरों ने वहां पे 360 बुत रखे हुए थे। हालांकि काफिर ये कहते थे, मक्का के मुशरिक ये कहते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने तो ये हदायत की थी इब्राहिम को जो तुम्हारे जद्दे अमजद थे कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, ना अकीदे में और ना ही अमलों में। नंबर दो, व ताहिर बेतिया लिल्लाइफीना वल्काइमीना वर्रुकाए सुजूद। व ताहिर, ताहरा और तोहर जो है ये पाकीजगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस्मानी भी और फिर रूहानी भी, और जो है वो हद असगर भी और हद से असगर भी और हद से अकबर भी, यानी छोटी नापाकी हो या बड़ी नापाकी हो तो उनसे जो है वो पाक होना, उसके लिए इसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ताहिर ये ऑर्डर का सीगा है कि पाक रख। मानी क्या है? कि बैतुल्ला जो है इसको जो है वो बुतों से पाक किया जाए, क्योंकि उस जमाने में जो है वो क्या था कि कौमे जुरहम ने, अमालका ने यहाँ कुछ बुत रखे हुए थे फिर जिनकी पूजा पाठ जो थी वो हो रही थी। तो मुराद क्या है कि कुफर और शिर्क से उनको पाक कर दिया जाए। तो ये कहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा रहा है, लेकिन सारे लोगों को तवज्जो दिलाई जा रही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म दिया गया तो फिर बाकी लोगों को जो है वो खास तौर पर जो है वो इसका हुक्म है, और लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह की जो मस्जिद है उसके अंदर शिर्क ना किया जाए। तो बेटिया मेरे घर को तो पाक किस चीज के लिए रखने? लिताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए। तो खाना काबा की, मस्जिद हराम की खास इबादत तवाफ है, और तवाफ जो है ये बगैर वुजू के नहीं होता, इसके लिए वुजू जो है वो शर्त है। नापाकी में भी नहीं होता, जैसे जो है वो सही कर सकते हैं अगर कोई नापाक है, जैसे औरत है मजबूरी में है, लेकिन तवाफ नहीं कर सकते। और अगर वुजू टूट जाए तो आप तवाफ करते हुए जहां पर मौजूद हैं तो वुजू करके आप वहां से शुरू कर सकते हैं, और कहते हैं कि हरम की खास इबादत है तवाफ, क्योंकि बाकी मसाजिद में जो है वो रुकू, सुजूद, कयाम, कुरान की तिलावत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तवाफ नहीं हो सकता। तो अगर कोई हरम में हो तो उसको जो है वो तवाफ का खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। वलकाइमीना, और काफ वो मीन रूट है, और कयाम करना, तो मानी क्या है, इससे बड़ा जो है वो नमाज है, क्योंकि नमाज में जो है वो खड़ा हुआ जाता है और कयाम किया जाता है। और वर्रुकाई, रा काफ आइन इसका रूट है, रुकू करना, और नमाज में रुकू किया जाता है। और सुजूद, साजीम दाल, सजदा वाहिद है और सुजूद इसकी जमा है, और सुजूद करना। तो दरअसल यहाँ पर जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है हरम की, हरम में जब मौजूद हो तो अल्लाह की बंदगी और इबादत की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। अब वहां बैठकर लड़ना झगड़ना, दुनिया की बातें करना, तस्वीरें बनाना, सेल फोन जो है वो बजते रहते हैं, और जो है वो उससे क्या होता है कि लोग जो हैं जो अल्लाह की इबादत के लिए आए हुए होते हैं वो मुतासिर होते हैं। तो आप अपना जरूर मुहासबा किया करें, आप अपना जरूर जायजा लिया करें कि जब मैं हरम में जाती हूँ और जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया हरम में जाने का, तो वहां पर मैं जाकर क्या करती हूँ, कोई शिरकिया अमल तो नहीं करती। जैसे एक औरत कह रही थी कि मैंने तो हरम में जाकर वहां की मट्टी मट्टी जो है उसको उखेड़ कर मैं लाई, क्योंकि वो बड़ी बाबरकत होती है। तो ये तो शिरकिया बात है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तो कोई काम नहीं किया ना। तो असल बात क्या है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, दीन की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया था कि खाना काबा की जो तजदीद की गई है असल बुनियादों पर, इसको दोबारा जो बनाया गया है, तो असल मकसद क्या है कि इसको जो है तवाफ, कयाम, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। हुक्म नंबर 3, आयत नंबर 27, सूरत अलहज, अज़्ज़िन फिन्नासी, और लोगों को ऐलान कर दो। अज़्ज़िन जो है हमजा जाल नून इसका रूट है, और उजुन कान को कहते हैं, और कानों पर हाथ रखकर अजान भी जाती है ना, तो इसके मानी क्या होते हैं। और आप ऊंची आवाज में बोलना चाहते हैं तो आप अपने कानों पर हाथ रख के आप ऊंचा बोल सकते हैं ना, तो इज्ने आम कर दो, ऐलान कर दो। क्या बिलहजी, हज का, कि लोगों को जो है वो बैतुल्ला का हज जो है इसका ऐलान करो कि वो तुम पर फर्ज कर दिया गया है। या तू का फिर फरमाया कि वो आए तुम्हारी तरफ रिजालन पैदल होकर। तो रा जीम लाम जो है ये रजुल जो है ये आदमी को कहते हैं, और रिजल जो है ये पांव के लिए इस्तेमाल होता है, तो पैदल, तो रिजालन पैदल। वाला कुल्ले दामिरिन, और हर दुबली ऊंटनी पर। तो दामिर जो है, द्वाद मीम रा जो है ये कमजोर जो ऊंटनी होती है, जो दुबली ऊंटनी होती है, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द्वाद मीम रा, ऊंट या ऊंटनी या घोड़े को भी कहते हैं जो तवील सफर के बाद जो है वो कमजोर हो जाए, तो उसको जो है वो दामिर कहा जाता है। इसमें अहले लुगत कहते हैं कि बारीक और लतीफ जिस्म वाला हर वो घोड़ा, ऊंट, हर वो सवारी जो सफर की मुशक्कत की वजह से जो है वो कमजोर जिस्म वाली हो जाए, खुराक की कमी की वजह से नहीं, सफर की मुशक्कत की वजह से, नर हो या मादा। तो अरब में चूंकि ऊंट की सवारी आम थी, इसलिए ज्यादातर जो है फिर दामिर का लफ्ज दुबले ऊंट के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो फरमाया कि लोगों को ऐलान कर दो कि हज जो है उन पर करना फर्ज है, इन पर जो साहिब इस्तात है। आप ये पीछे सूरत आल इमरान में पढ़ चुकी हैं, वल नासी हिजुल बैती मन इस्तफा इलैही सबीला, कि जो साहिब इस्तात होते हैं उन पर हज फर्ज है। और साहिब इस्तात कौन होते हैं, जिनके पास इतना जो है वो जादेरा हो, पैसे हो, फिर वो मुसलमान हो और वो बालिग हो, और उसके साथ औरत के लिए महरम की शर्त भी बताई जाती है, और रास्ता जो है वो भी जो है वो पुरअमन हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास जो है वो दूर दराज से लोग फिर आए, कमजोर ऊंटों पर यातीना वो आए, मिनकुल्ले फजिन अमीक। फज जो है फा जीम जीम, ये रूट है, पहाड़ों के दरमियान रास्ते को कहते हैं, पहाड़ों के दरमियान के रास्ते को फज कहा जाता है। और अमीक, आयन मीम काफ, ये लफ्ज जो है ये दूर दराज के लिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि पहाड़ों के दरमियान का रास्ता तंग होता है, इस वजह से जब उसका कसरत से उसमें लोग आते जाते हैं तो वो रास्ते जो है वो गहरे हो जाते हैं। तो अमीक, अमीक का लफ्ज जो है फिर दूर दराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गहरे के लिए, दूर दराज के लिए। तो फरमाया कि ए इब्राहिम, लोगों में ऐलान कर दो कि वो हज के लिए आए, पैदल भी आए, तो पैदल कौन आएंगे, जो करीब रहने वाले लोग हैं, और दूर से भी लोग आएंगे अपने ऊंटों पर, अपनी सवारियों पर सवार होकर। यातीन मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, हर दूर दराज इलाके से जो है वो यहाँ पर हरम में आए, सवार होकर आए। ये यशहदू, चौथा हुक्म दिया जा रहा है, ताकि वो देखें, ताकि वो मुशाहिदा करें, ताकि वो हाजिर हों और वो देखें, मुनाफिया लहुम, कि जो फायदे उनके लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि फायदे, तो कौन से फायदे, दीन के फायदे भी और दुनिया के फायदे भी। तो यहाँ पर आकर जो है, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए फायदे रखे हैं, उनको आकर जो है वो देखें। तो क्या फायदे हैं, दीनी फायदे के नमाज जो है वहां पढ़ेंगे, हरम की नमाज जो है वो आम नमाजों की निस्बत जो है उसमें 1 लाख नमाजों का सवाब है। फिर तवाफ करेंगे, फिर हज और उमरा करेंगे, फिर अल्लाह से मगफरत और रजा की दुआ मांगेंगे, और फिर हरम में मकाम इब्राहिम पर और तवाफ करते वक्त, और फिर जो है वो रुकने यमानी के पास, और फिर हतीम के अंदर, और फिर सही के दौरान। तो ये मुख्तलिफ मौके हैं, और फिर जो है वो सफा और मरवा पर, तो दुआएं कबूल होती हैं। तो ये बहुत से फायदे हैं जो उनको हासिल होंगे। और दुनिया के फायदे क्या हैं, तिजारत कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, यानी असल मकसद ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ साथ वो ये मकासद भी चाहते हैं तो ये भी इनको मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा मकसद क्या है कि रब की रजा हासिल करना और अपने गुनाहों की माफी चाहना, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उमरे में खर्च करना गुर्बत और मोहताजी को दूर कर देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए हज किया और उसने बेहयाई की बातों से और गुनाह के कामों से बचता रहा, तो हज से ऐसी हालत में वापस आएगा गोया अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। और अब आप देख लें कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बेगुनाह होता है। तो ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, और हज और उमरे के जरिए इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो प्यारी बहनों, यहाँ पे बताया जा रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इसमें बहुत से फायदे हैं। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा कि उनको हुक्म दिया गया था कि आप ऐलान कर दें, तो इब्ने अबी हातिम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह से रवायत किया है, मुझे ये बात बड़ी ही अच्छी लगती है, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज की फर्जियत के ऐलान का हुक्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की कि यहाँ तो जंगली मैदान है, कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ आबादी है वहां मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी, ना तो मीडिया, ना टीवी, ना कोई लाउड स्पीकर, ना माइक, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ऐलान करने की है, इसको सारी दुनिया में पहुंचाना और फैलाना इसकी जिम्मेदारी हम पर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर ये ऐलान किया, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा कर दिया। तो उन्होंने लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाया। बात कहते हैं कि आपने जबले अबी कबीस पर चढ़कर ऐलान किया, कानों में उंगलियां रखकर दाएं और बाएं, शरकन गरबन, हर तरफ आवाज दी कि ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने अपना घर बनाया है और तुम पर इस घर का हज फर्ज किया है, और तुम अपने रब के हुक्म की तामील करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में पहुंचा दी, सिर्फ उस वक्त के जिंदा इंसानों तक नहीं, बल्कि जो इंसान आइंदा और ता कयामत पैदा होने वाले हैं। मोजे के जरिए जब इस आवाज को पहुंचा दिया गया, और जिस जिसकी किस्मत में है हज करना, तो अल्लाह ताला उससे हज करवाते हैं, और जो हाजी जब हज के लिए जाता है और उमरा करने वाले जब उमरे के लिए जाते हैं, तो एक ही पुकार और एक ही निदा जो है वो बुलंद करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का वो नारा मस्ताना लगाते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज की तलबीह की असल बुनियाद ये निदाए इब्राहिमी का जवाब है। तो इसलिए लोग लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहते हुए जो है वो उस तरफ को खाना काबा की तरफ जाते हैं। फिर पांचवा हुक्म दिया, वह यज़कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, और चंद मुकर्रर दिनों में जो है वो अल्लाह का नाम ले। तो चंद मुकर्रर दिन जो है इससे मुराद कौन से दिन है? फरमाया कि ये जो चंद मुकर्रर दिन है तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन कहते हैं कि ये गिनती के चंद दिन है। अय्यामे मालूमात से मुराद ये कुर्बानी के जानवर जिबा करने के दिन है। अय्यामे तशरीक, यौमुन नहर, 10 जुलहज और 3 दिन इसके बाद के, 11, 12, 13 जुलहज तक कुर्बानी की जा सकती है। तो अयामे मालूमात से मुराद 10 जुलहज और अयामे मादूदात से मुराद अयामे तशरीक मुराद लिए जाते हैं। अब आप देखें कि इन मालूम दिनों में या इन चंद मुकर्रर दिनों में जो है वो अल्लाह का जिक्र किया जाए, किस चीज पर? अला मा रज़क़हुम, अल्लाह ताला ने उनको जो है वो जो रिज़्क़ अता दिया है, तो ऊपर उस चीज के जो दी है अल्लाह ने उनको, अल्लाह ने जो उनको रिज़्क़ अता किया है किस में से? मिन बहीमतिल अनआमी, चौपायों में से। अल अनआमी जो के मवेशी हैं, तो जानवरों में से जो के मवेशी हैं, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी। तो बहीमतुल अनआम से मुराद जो है पालतू चौपाए हैं, तो इन पर अल्लाह का नाम लिया जाए। तो अल्लाह का नाम लेने से मतलब क्या है कि इनको जो है फिर अल्लाह के नाम पर जो है वो जिबा किया जाए। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इन पर अल्लाह का नाम लेने से मुराद अल्लाह का नाम लेकर उन्हें जिबा करना है। तो अब आप देखें कि अल्लाह बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर मुसलमान जो है वो जानवर को जिबा करते हैं। और अयामिम मालूमात से मुराद जो है इसमें जो है वो कुर्बानी के दिन जो है वो मुराद लिए जाते हैं। और बाज लोग ये कहते हैं कि अयाम तशरीक भी मुराद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुर्बानी के दिन जो है वो मुराद है। तो जब वो जानवरों को जिबा करें तो क्या करें? नंबर 1, फकुलू मिन्हा, तो खुद इसमें से खाएं। नंबर 2, वह अत एमुल बायसल फकीर, और जो तंग दस्त है, जो फकीर है, मोहताज है, उनको खिलाएं। आपने पीछे बासा लफ्ज पढ़ा था ना, बासा जंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और भूख के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बायसा जो है जो तंगी में है, जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है, जो तंग दस्त लोग हैं, और फकीर, फकीर जो है ये भी मोहताज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि खुद भी खाएं और जो तंगदस्त और मोहताज हैं उनको भी जो है वो खिलाया जाए। तो इसके क्या मानी है? तो इसके मानी ये हैं, जैसे हमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल मिलता है कि एक हिस्सा खाओ, एक हिस्सा हमसायों को दो और एक हिस्सा मसाकीन में तकसीम कर दो। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने जो है वो एक मौके पे फरमाया कि यौमुन नहर को जो है कुर्बानी के जानवर जिबा करना, खुद भी खाना, मसाकीन को भी देना और मेरे भाई के घर भी भेजना। तो अब इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ तंगदस्त और फकीर ही खा सकते हैं, अमीर या रिश्तेदार या खुद नहीं खाया जा सकता। तो खुद भी खा सकते हैं और जो है वो दूसरों को भी खिला सकते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनका भी ख्याल जो है वो रखना चाहिए। फिर सातवां हुक्म दिया, सुम्मल यकदू तफासहुम, सुम्मल यकदू, फिर जो है चाहिए कि वो दूर कर दें। जैसे कजा करना, इसका मतलब होता है कि अदा कर दें, तो वो दूर कर दें। तफासहुम, ता फा सा जो है इसके मानी होते हैं इंसान के बदन पर जो मैल कुचैल होता है ना, उसको कहते हैं। तो हालत एहराम में बालों का मूंढना, काटना, नोचना, नाखून तराशना, खुशबू लगाना, ये सब चीजें हराम होती हैं। तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि फिर जैसे बालों के नीचे, नाखूनों के नीचे इंसान के बदन पर मैल कुचैल जमा हो जाता है। तो तफासा के मानी है मैल कुचैल जो चढ़ चुका है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तफासा गंदगी को कहते हैं। तो वो गुबार और मैल कुचैल जो सफर में आदमी पर चढ़ जाए, हज के सिलसिले में अहराम की पाबंदियों की वजह से चढ़ जाए, तो वो क्या है? तफासा है। तो जब कुर्बानी हाजी कर लेता है तो कुर्बानी से फारिग होकर अहराम खोल देता है, फिर अब हजामत करवाए, नहाए धोए और उसके साथ ही अपना मैल कुचैल जो है वो दूर करे। वल यूफू नुजूरहुम, और आठवीं बात है, और अपनी नजरें जो है वो पूरी करें, यानी उन्होंने अगर किसी ने इस मौके पर कोई नजर मानी हुई है तो वो अदा करें। तो नजर वाहिद है, नून जाल रा और नुजूर इसकी जमा है। उर्दू में मन्नत के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा काम जो किसी शख्स पर लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, अपनी जबान से वो मन्नत मानकर उसको अपने ऊपर लाजिम कर ले कि मैं फलां काम करूंगी अगर मेरा ये काम ऐसे हो गया। तो अब जो भी अगर किसी ने कोई नजर मानी हुई है तो उसको अपनी नजर को पूरा करना चाहिए। नंबर 9, वल यतवफू बिल बैतिल अतीक, और इस कदीम घर का तवाफ करें। और यहां पर जो है वल यतवफू, तो ए त्वा वफा इसका रूट है और इसके मानी है तवाफ करना। बिल बैती घर को कहते हैं, और अल अतीक, अल अतीक जो है, अतीक लफ्ज अरबी जबान में तीन मानों में इस्तेमाल होता है, इसको आप याद रख लें। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का लकब भी था। और अतीक के तीन मानी क्या है? एक मानी है कदीम, पुराना, दूसरे आजाद, जिस पर किसी की मलकियत ना हो, तीसरे मुकर्रम और मुअज्जज को कहते हैं। तो हरम जो है, खाना काबा जो है, ये क्या है? ये तीनों मानी इस घर पर जो है वो सादिक आते हैं। तो यहां पर अब बताया जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनका दीन क्या था, और बैतुल्ला की जो तामीर की तो उसका मकसद क्या था। तो फरमाया जालिक, ये था तामीर काबा का मकसद, ये थे उसके मकासिद। वमन युअज्जिम, और जो जो है वो ताजीम करे, जो एहतराम करे, हुरमात इल्लाही, अल्लाह की हुरमतों का, तो अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का जो लोग एहतराम करेंगे, फहुवा खैरुल्लहु इंदा रब्बे, तो ये उसके रब के नजदीक खुद उसी के लिए बेहतर है। फहुवा खैरुल्लहु, तो ये चीज उसी के लिए ज्यादा बेहतर है, इंदा रब्बे ही, उसके रब के नजदीक। तो इसके मानी क्या है कि वो तमाम चीजें जिनका एहतराम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उनका एहतराम करना चाहिए, और ये तमाम चीजें, इनका एहतराम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो है वो चला आ रहा है। वाहिल्लत लकुमुल अनामु, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो क्या चीजें थी जिनका जो है वो एहतराम करना था। तो अब बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए जो है वो अनाम जो है, मवेशी जानवर जो है वो हलाल कर दिए गए। तो वैसे तो आप देखें कि अल्लाह की कायम करदा तमाम हुरमतों का एहतराम करने को कहा जा रहा है। अब यहाँ पे चंद एक का जो है वो जिक्र भी किया जा रहा है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा था ना, अहले मक्का ने जो है वो हरम का रास्ता रोका और मुसलमानों को जो है उन पर हज और उमरे का रास्ता बंद कर दिया, और उन्होंने जो जाहिलाना रस्में शुरू कर दी थी, शिरकिया रस्में जो थी, तो उसकी वजह से क्या था कि हरम का एहतराम नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो मवेशी जानवर है तो ये हुरमत नहीं है। जैसे अहले मक्का क्या करते थे, बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम जो है वो समझते थे, जो उन्होंने मुख्तलिफ अपने देवी देवताओं के नाम पर छोड़े हुए थे, वो समझते थे कि ये जानवर जो है ना ये मोहतरम है, तो इनको कोई ना छेड़े, फला देवी के नाम पर है, फला देवता के नाम पर है। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो तमाम मवेशी जानवर हलाल कर दिए, ये नहीं है हुरमत, बल्कि ये जानवर तो सारे हलाल हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम, सवाए इसके कि वो चीजें जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। तो हराम जानवर कौन से हैं, वो आपने सूरत अलनाम और सूरत नहल में पढ़े हैं, जिसमें मुर्दार शामिल है, खून शामिल है, सूअर का गोश शामिल है, और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जिक्र किया जाए। आपने सूरत जो है वो अलनाम आयत 145, सूरत नहल आयत 115 में ये चीजें पढ़ी है। तो कहा कि जो हराम है, इल्ला मा युतला अलैक, वो तो तुम पर तिलावत की जा चुकी है, तुम्हें बताया जा चुका है, तो फिर किससे बचना है? फजतनिबु रिज्जा मिनल औसानी, बस इज्तनाब करो, बस बचो। अर रिज्जा रिस जो है ये गंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तुम लोग जो हो गंदगी से बचो। मिनल औसानी, वो सानून इसका रूट है और औसान का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और वसन के मानी होता है अपनी जगह साबित कदम रहने वाले बुत। ये जो है वो तराशे हुए बुत हो सकते हैं, और जैसे बाज कहते हैं कि मखसूस पत्थर, दरख्त, सितारे या दरिया वगैरह के बारे में भी लोग जो हैं वो ये अकीदा रखते हैं कि ये भी उनकी किस्मत बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी औसान का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बुतों की परस्तिश जो है उससे इस तरह बचो जैसे कोई शख्स गंदगी से घिन खाता है, दूर हटता है। अब देखें कि गार्बेज कैन है या गार्बेज का ट्रक है, गुजर रहा होता है, तो कैसे लोग अपने गाड़ी के शीशे बंद कर लेते हैं, तो कैसे जहां पे भी गंदगी होती है उससे लोग घिन खाते हैं। तो ये जो रिज्स है ना, रा जीम सीन, ये गंदगी और पलीदी को कहते हैं। तो यहां मुराद है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये औसान यानी लोहे, लकड़ी या किसी भी चीज के जो किसी भी चीज के जो बनाए हुए बुत है ना, वो क्या है कि वो गंदगी है, तो इससे घिन खाओ, इनको छोड़ दो, इनकी इबादत नहीं करो, ये नजासत है। वजतनेबू कौल ज़ूरी, और झूठी बातों से बचो। ये बड़ी खास बात है जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है, वजतनेबू और इज्तनाब करो और दूर रहो कौल ज़ूर, झूठी बात से। कौल ज़ूर किसे कहते हैं? ज़ूर जो है ज़ा वो रा, सीने के ऊपर के हिस्से को कहते हैं। अब देखिए सीने के ऊपर की मुड़ी हुई जो हड्डी है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो इस तरह ये मुड़ी हुई बात को भी कहते हैं, टेढ़ी बात, हक के खिलाफ झूठी बात, शिर्क करना। आप देखें कि ये ज़ियारत भी इसी की फैमिली से इस्तेमाल होता है। जब ज़ियारत करते हैं तो क्या करते हैं कि आप जो है किसी की तरफ जो है वो मुड़ते हैं। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि शिर्क जो है ना उसको खत्म कर दिया जाए, अकीदे से भी और फिर अमल से भी, जाहिरी शिर्क भी और बातनी शिर्क भी। और कौल और ज़ूर से मुराद वो झूठ है जो हक के खिलाफ है, खा वो अकीदे में हो यानी शिर्क और कुफर लोग कर रहे हैं, या मामलात में है झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुनाहे कबीरा के बारे में फरमाया, एक तरफ कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालदैन की नाफरमानी करना, और फरमाया कि झूठी गवाही देना और आम बातों में झूठ बोलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल ज़ूर को बार बार फरमाया, ये बुखारी की रवायत है। तो कौल ज़ूर जो है इससे मुराद जो है वो सारी वो बातें हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं, तो उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मना कर रहे हैं। मुनाफा लिल्लाही गैर मुशरिकीना बिही, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बन जाओ, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। हुनाफा, हा नून फा जो है इसका रूट है, और इसके माने क्या है कि सबसे कटकर, सबसे हटकर अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करना। और हुनाफा हनीफ की जमा है, माइल होना, एक तरफ होना, यक रुखा होना, शिर्क से तौहीद की तरफ जो है वो माइल होना। तो मानी क्या है, यक तरफा होना, खालिस अल्लाह की इबादत करना, निफाक अपने अंदर से निकाल देना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब है मुस्लिम हनीफ, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, गैर मुशरिकीना भी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करो। वो मैं युशरिक बिल्लाही, और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, फका अन्नमा, बस गोया के वो खर्रा, खा रा जो है ये इसके मानी होते हैं किसी चीज का जो है वो आवाज और इस्तराब के साथ गिरना। तो अगर कोई शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, गोया कि वो गिर पड़ा है एक आवाज के साथ, मिन समाई, आसमान से, बुलंदी से, तो शिर्क करने वाला जो है गोया वो आसमान से गिर गया। फतख तफाहू, और खा तो फा जो है स्नैच करना, छीन लेना, जैसे उचक कर कोई चीज ले लेना, जैसे कब्बा नहीं होता कोई बच्चे से चीज छीन कर ले जाए। तो अब क्या होगा कि जो शख्स ऐसा करेगा فتختفہ پس اچک لے جاتے ہیں. اب تیرو یہ اسم جنس ہے پرندے. تو جو لوگ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں تو پرندے جو ہے وہ ان کو اچک کر لے جاتے ہیں. او تہوی ہا و یا, یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں آسمان یا بلندی سے گرنا, یا وہ گر پڑتے ہیں گہری ہو, یعنی یا پھینک دیتی ہیں گرا دیتی ہیں اس کو ہوائیں. من سی میں مکانن جگہ, سہیق دور, سینہا قاف جو ہے اس کے اصل معنی پیسنے کے ہوتے ہیں. تو کوئی چیز یا کوئی جگہ اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے پھر وہ پیس کر, یعنی پاش پاش ہو کر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دراصل یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا ہے, شرک کرتا ہے, تو بلند تر مخلوق تھی اب کم تر مخلوق کے سامنے جھک گئی, انسانوں کے آگے, پتھروں کے آگے, اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے, تو وہ توحید کی بلندیوں سے نیچے گر گئی. کیونکہ کلمہ طیب جو ہے وہ بلند کلمہ ہے, وہ اعلیٰ کلمہ ہے, وہ ہمیشہ اونچے رہنے والا ہے, وہ اللہ کا نام ہے نا. تو جو شرک کرتا ہے وہ توحید کی بلندیوں سے نیچے گر جاتا ہے, جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑتا ہے یا مشرکین کے پیچھے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بلنگر کا جہاز جو ہر چٹان سے ٹکرا سکتا ہے, ایسے ہی جیسے کٹی ہوئی پتنگ جس کو ہوا جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے. تو ایسا شخص جو ہے پھر ایسا ہی ہے کہ جو کہیں کا بھی نہیں رہتا, جیسے جو ہے وہ کوئی چیز گرے اور پرندے, شکاری پرندے جو ہے اس کو اچک کر لے جائیں, جیسے کہ شیطان جو ہے پھر ایسے انسان کو اغوا کر لیتا ہے جو اپنے خواہشات نفس اور اپنے جذبات جو ہے اس کی ہوا کے پیچھے اڑے اڑے پھرتے ہیں. تو ہوا پھر کیا کرتا ہے کہ کسی بھی گہرے کھڈ میں وہ جا کر گر سکتے ہیں. تو فی مکان سحیق, یعنی جہاں ہوا اس کو لے جا کر پھینک دے گی, اس کی خواہشات اس کو لے جا کر پھینک دے گی, اس کا شرک اس کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جا کر پھینک دے گا, جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے, جہاں وہ گہرے کھڈ میں گر کر پاش پاش ہو جائیں گے. ذالک, یہ ہے اصل معاملہ. لوگوں سمجھو, توحید پرست بن جاؤ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اور جو اللہ کی مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے گا, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کے تقوا میں سے ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کا خوف ہے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ کے خوف سے جھک رہا ہے, آپ کے دل میں تقوا ہے. اگر تقوا ہے تو پھر آپ شرک نہیں کریں گے, اگر تقوا ہے تو آپ جو ہے مسجد حرام جو ہے اس کا احترام کریں گے, اگر آپ کے اندر تقوا ہے تو آپ قول و زور اور بتوں کی بندگی سے جو ہے وہ بچیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے دوبارہ قربانی کی بات کرتے ہیں کہ لکم فیہا منافع, کہ یہ جو جانور ہے اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں, الی اجل مسمن, ایک مقررہ مدت تک. تو اب یہاں پر جو ہے وہ جانوروں سے ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی قربانی کرنے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان جانوروں پر سوار نہیں ہوا جا سکتا اور ان پر سامان نہیں لادا جا سکتا, تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان جانوروں سے آپ ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا آپ ان پر سواری کر سکتے ہیں, آپ ان کا دودھ پی سکتے ہیں اور ان پر اپنا سامان لاد سکتے ہیں, تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ثم محلوہا, پھر ان کو یعنی جب تک کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے. ثم پھر محلوہا, پھر پہنچنا ہے اسے تک, یعنی پھر یہ جانور جو ہے انہیں قربانی کی جگہ پر پہنچنا ہے کہ جہاں پر قربانی کو, جہاں پہ جانور کو جو ہے وہ قربان کرنا ہے. تو اہل مکہ کیا سمجھتے تھے کہ نہ دودھ پی سکتے ہیں, نہ سواری کر سکتے ہیں, نہ سامان لا سکتے ہیں. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے, سخت تکلیف میں ہے, اونٹ کی مہار تھامے ہوئے. آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے کہا یہ حدی کا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جا. تو جو بھی انہوں نے مشرکانہ رسمیں اختیار کر لی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے, تو اللہ رب العزت نے اس سے جو ہے وہ منع کیا ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا, جو حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی ہے. तो सुमा महिलुहा फिर जो है कुर्बान होने की जगह क्या है, इलल बैतिल अतीक, उसी कदीम घर के पास है, यानी इससे मुराद जो है वो फिर खाना काबा है, यानी मस्जिद हराम में कुर्बानी की जाए या फिर हरम के हदूद में कुर्बानी करना। तो मुराद क्या है कि फिर जहां पे भी कुर्बानी की जगह है वहां पे कुर्बानी करना। फिर आयत नंबर 34 में फरमाया, वाले कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकरर किया है। नून सीन काफ इसका रूट है और आप ये पढ़ चुकी हैं कि इसके असल मानी होते हैं जैसे नसा का सौप, कपड़े को धोकर पाक साफ करना, उससे मैल कुचैल उतारना। तो इससे जो है ये लफ्ज जो है ये इबादत के लिए जाहिद यानी कोई इबादत करने वाला है, जोहद इख्तियार करने वाला है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और हज के जो मनासिक हैं उनको भी जो है वो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हज जो किया जाता है उसमें कुर्बानी है, एहराम है, या जो कुछ भी उसके जो है वो हज के अरकान हैं, जो भी उसमें हज में किया जाता है, तो वो सारे अल्लाह की रजा की खातिर किए जाते हैं, खास खास अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो मनसक जो है ये नसक से है, यानी मानी क्या है यहाँ पे, कुर्बानी करना, अल्लाह के तकर्रुब के लिए कुर्बानी करना। हर उम्मत के लिए ये कायदा मुकर्रर था, यानी हर उम्मत के लिए कुर्बानी जो है इसका कायदा मुकर्रर था। क्यों? लियस्कुरुस्मल्लाही, ताकि वो जो है वो नाम ले अल्लाह का, अला मा रज़क़हुम, जो अल्लाह ने उनको जो है वो दिया है, ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उनको बख्शे हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि तमाम शरीयतों में जो है क्या था कि अल्लाह के लिए वो लोग जो है वो जानवर को ज़िबा करेंगे, गैर अल्लाह के लिए नहीं ज़िबा करेंगे। तो अल्लाह के लिए सदका करना, अल्लाह के लिए खैरात करना, तो किसी बुत के नाम पर, किसी इंसान के नाम पर कि ये जुमेरात का खत्म है, फलां पीर के नाम है या फलां बुजुर्ग के नाम है, तो उसके नाम पर नहीं हो सकता। तो क्या करना है कि अल्लाह के लिए करना है, कुर्बानी का कायदा है हर उम्मत के लोगों पर, ताकि उस पर उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले, अलामा लियस कुरुस मल्लाई, ताकि वो अल्लाह का नाम ले, अलामा रजा कहो मिम बही मतिल अनामी, उन जानवरों पर जो अल्लाह ताला ने मवेशियों में से उनको दिए हैं। फाइला हुकुम इलाह वाहिद, तो असल बात क्या है कि लोगो तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, फलाहू असलिमू, तुम उसी के मुती फरमान बनकर रहो। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जिबा करना इबादत का तरीका है और इसके जरिए मकसद है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। तो जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर जिबा करना चाहिए और अल्लाह को याद करना चाहिए, और किसी और का नाम लेना, किसी बुजुर्ग का, पीर का, किसी बुत का, किसी जैसे हाम वसीला वगैरह जो जानवर थे, बहीरा साहिबा वसीला हाम, तो उन्होंने वो मुख्तलिफ बुतों के नाम पे छोड़े हुए, तो कहा कि ये चीज जायज नहीं है। वबश्शिरिल मुखबितीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मुखबितीन को आप खुशखबरी दे दीजिए। मुखबितीन कौन होते हैं? खा बाता इसका रूट है और नीची जमीन, पस जमीन को कहा जाता है, और खबीत ऐसा शख्स होता है जो अपने आप को हकीर समझे। हजरत कतादा मुजाहिद फरमाते हैं, हजरत कतादा और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुखबितीन जो है वो मुआदीन में से आते हैं, यानी जो है वो अल्लाह की खातिर जो है वो तवाजो इख्तियार करने वाले। अमर बिन औस कहते हैं कि मुखबितीन वो लोग हैं जो जुल्म नहीं करते, और अगर कोई उन पर जुल्म करे तो उसे बदला नहीं लेते। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये वो लोग हैं जो अल्लाह की कजा और तकदीर पर राजी हो जाते हैं, फराखी में भी और तंगी में भी। अब आप देखें कि अब तक की जिंदगी में कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि हमेशा यही बात कहते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया ना, यहाँ शादी क्यों हो गई, फलाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे पर ही ऐसी आजमाइश क्यों हो गई, फलां बीमारी हमारे घर ही क्यों आ गई, क्यों? यानी वो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं होते। तो तकदीर पर ईमान रखने वाले जो हैं कहते हैं कि वो होते हैं मुखबितीन। तो मुखबितीन असल में है कौन फिर? मुखबितीन जो है आजिजाना रविश इख्तियार करने वाले, जो गुरूर नफ्स को छोड़ देते हैं, अल्लाह के मुकाबले में आजी इख्तियार करते हैं, अल्लाह की बंदगी और गुलामी पर राजी हो जाते हैं, अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाते हैं, वो होते हैं मुखबतीन। अब आप देख लीजिए कि अपने आप को हकीर समझना, अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाना, तो क्या ये बेहतरीन जो वस्फ है, ये क्या ये जो खूबी है, क्या ये आपके अंदर पाई जाती है? क्योंकि अल्लाह के फैसलों पर राजी होना ये है असल बात। फिर आप देखिए कि अब मुखबतीन की मजीद सिफात बताई जा रही है, ये कौन लोग होते हैं? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जब ये अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो इनके दिल जो हैं वो कांप उठते हैं। सुभान अल्लाह, कैसी जबरदस्त सिफत बताई गई है कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर इनके दिल जो है वो कांप उठते हैं। तो वजिलत जो है वो जीम लाम जो है इसके मानी क्या है? ऐसी खौफ और हैबत जो किसी की अजमत की बिना पर दिल पर दिल में पैदा हो। तो ऐसे लोगों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो इनके दिलों पर एक हैबत तारी हो जाती है और उसकी हैबत से वो गुनाह छोड़ देते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देते हैं। तो आप देख लें कि इसके मानी क्या है? अल्लाह की आयात का हवाला दिया जाए, अल्लाह के रसूल की बात को पेश किया जाए, तो इनके दिल जो है वो पिघल जाते हैं, कांप उठते हैं। वो स्वाबिरीना अलामा अस्वाबहुम, और जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सबर करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, और सबर करने वाले हैं उन पर, उन्हें जो भी पहुंचे, अलामा अस्वाबहुम। अब आप देख लें अलामा अस्वाबहुम में सब कुछ जो है वो आ गया। तो यानी दुनिया की जिंदगी में जो है, जो मुसीबत, जो आजमाइश, जो परेशानी भी उन पर आती है, तो उस पर वो सबर की तस्वीर बन जाते हैं, उसको अल्लाह का फैसला समझकर वो कबूल कर लेते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये मुखबतीन है, अल्लाह की राह में हर मुसीबत को पूरी हिम्मत के साथ बर्दाश्त करते हैं। शादी हो गई, बड़े साल गुजर गए, औलाद ही नहीं हुई, और फिर औलाद भी दी तो एक पर एक बेटी अल्लाह देता चला गया। बेटियां अल्लाह की रहमत है, लेकिन उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, और आजकल के माहौल में जो बेटियों के साथ खास तौर पर जैसे शादी ब्याह और लिखाना पढ़ाना और तरबियत के सिलसिले में जो मसाइल पेश आते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। और यहाँ के माहौल में रहते हुए तो बेटा हो या बेटी है, और बल्कि मुझे तो लगता है कि कहीं भी आप रह रहे हैं तो बेटा है या बेटी है, तो उनकी तरबियत की जो आजमाइश है ये बड़ी ही सख्त है। आप बच्चों को नमाज तो सिखा सकते हैं, लेकिन उनसे नमाज पढ़वा नहीं सकते। आप बच्चों को कुरान सिखा सकते हैं, कुरान की तालीम दे सकते हैं, लेकिन कुरान का शौक तो नहीं पैदा कर सकते, वो तो अल्लाह ही है जो उनको देगा। तो उनकी तालीम और तरबियत के लिए फिक्रमंद होना, उनके साथ बेहतरीन मामला करना, तो आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई आजमाइश आएगी तो फिर क्या करना है? सबर करना है। तो ये आजमाइश जो है माल की हो सकती है, औलाद की हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कभी अपने रिश्तेदारों की तरफ से आजमाइश हो जाती है, और दोस्तों की तरफ से हो जाती है, जॉब ही नहीं मिल रही है, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, कोई भी मुसीबत हो सकती है, तो उसको अल्लाह का फैसला समझकर जो है वो उस पर राजी हो जाना, उस पर सबर करना। वल मुकीम सलाती, और वो नमाज कायम करते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं यहाँ पे मुकीम सलाती, मुकीम सलाती ये जो है इसके माने क्या है कि सबर और नमाज का चोली दामन का साथ है। तो सबर पैदा करने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, और अगर आप चाहती हैं कि आपके अंदर सबर पैदा हो तो नमाज के अंदर मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार कीजिए, अकामत कीजिए नमाज की, और फिर ये के खास तौर पर तहज्जुद की नमाज जो कि नफली नमाजों में सबसे अफजल है, बड़े खुश नसीब है जो पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले। वल मुकीम सलाती, कि वो नमाज को कायम करते हैं, और कायम करने में नमाज के अरकान, शरायत, उसके फराइज, और जो भी नमाज के आदाब है उसका ख्याल रखना, उसकी रूह का ख्याल रखना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। अगर वो खर्च करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, नंबर दो, सारा खर्च करने को नहीं कहा, उसमें से वो खर्च करते हैं, और देने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह ने आपके माल में जो दूसरों का हिस्सा रखा है तो उसको खुले दिल से खर्च करना, इसमें जकात भी आ जाती है और इसमें इन्फाक भी आ जाता है। तो यहाँ पे तरगीब दिलाई जा रही है, क्योंकि नमाज जो है वो इंसान इंसान के जिस्म की जो है वो इबादत है, और जकात जो है और इन्फाक ये इंसान की जो है वो माल की इबादत है, और इंसान के इखलाक और किरदार के लिए जो है फिर सबर है और फिर दिल का कांपना है। तो मुखबितीन जो है ये कौन होते हैं? ये इस्लाम की असल रूह इख्तियार करने वाले। और मुखबितीन जो है इसके असल माने क्या है? इस्लाम की असल रूह इख्बात है, और इख्बात की असल क्या है कि इंसान का सिर्फ जाहिर ही नहीं बल्कि इसका दिल भी अपने परवरदिगार के आगे झुक जाए। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर, और कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल किया है, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। बुदना, बदनत उनकी जमा है बुदन का लफ्ज, और इसके मानी है कि ये जो लफ्ज है ये जानवर, ये जो जैसे ऊंट का जानवर है, ये ऊंट या गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदन से है ये लफ्ज, बदन जो है जैसे आप देखें कि ऊंट और गाय जो है ये मोटे ताजे होते हैं ना, तो इसलिए इनको जो है वो इनका मोटा जिस्म होने की वजह से इनको बुदन कहा जाता है, तो मोटा जानवर। तो बाज लोगों ने इसको सिर्फ ऊंटों के साथ खास किया है, लेकिन हदीस से हमें जो है पता चलता है कि इसमें गाय भी शामिल है। तो ऊंट और गाय जो कुर्बानी के लिए ले जाए तो ये क्या है? ये अल्लाह के शायर में से है, तो इसमें हमारे लिए बेहतरी है। अब यहाँ पे जिबा करने का तरीका बताया जा रहा है कि फज़कुरु स्मल्लाहि अलैहा, बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो, तो इन्हें खड़ा करके जिबा किया जाए, यानी अल्लाह का नाम लिए बगैर जिबा करने से कोई जानवर हलाल नहीं होता, और अगर अल्लाह के साथ किसी और का नाम ले लिया जाए तो भी वो जानवर हराम हो जाता है, और अगर अकेले अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए तो भी वो हराम हो जाता है, सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर उसको जिबा किया जाए। और यहाँ पे ऊंट को जिबा करने का तरीका बताया जा रहा है, और ऊंट की कुर्बानी कैसे की जाएगी यहाँ पे बताया जा रहा है, सवाफ, और इसका रूट है स्वाद फा फा, और इसके मानी है कि सफ बस्ता, यानी ऊंटों को खड़ा करके एक सफ में, यानी खड़े खड़े फिर उनको जो है वो जिबा किया जाएगा, बायां हाथ पांव इसका बंधा हुआ होगा और तीन पांव पर वो खड़ा हुआ होता है। तो ऊंट कैसे जिबा किया जाता है? उसका एक पांव बांध कर फिर उसके हलकों में जोर से नेजा मारा जाता है जिससे खून का एक फवारा निकल आता है, फिर जब खून काफी बह जाता है तब ऊंट जमीन पर गिर पड़ता है। तो ये मतलब है सवाफ का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो अपने ऊंट को बिठाकर कुर्बानी कर रहा था, इस पर आपने फरमाया इसको पांव बांध कर खड़ा कर, ये है अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ऊंट का बायां पांव बांध कर बाकी तीन पांव पर उसे खड़ा करते फिर उसको नहर करते थे। फैजा वजबत जुनूबुहा, तो फिर जब उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं, वजबा का मतलब होता है गिरना, धड़ाम से गिरकर जो है वो मरना या मरते मरते धड़ाम से गिरना, यानी जब उसके गले में जो है जब उसके हलकों में नेजा मारा जाता है और जोर से जब नेजा मारा जाता है, जब उसका खून काफी बह जाता है और वैसे भी उसको जो है वो पाया पांव बांध कर तीन पांव पर जब उसे खड़ा करते हैं तो फिर जब जो है रस्सी से उसको जब खींचते हैं तो जमीन पर गिर पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि पीठें जो है वो जमीन पर टिक जाती हैं, फैजा वजब जुनूबुहा। तो अब यहाँ पर जो है ये भी बताया जा रहा है कि जमीन पर पीठें टिक जाएं, इसका ये नहीं मतलब कि बस वो गिरे हैं तो फौरन उनका गोश्त काटना शुरू कर दें, बल्कि गिरकर ठहर जाएं, तड़पना बंद कर दें, जान पूरी तरह निकल जाए, फिर जो है उनका गोश्त खाया जा सकता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर से जो गोश्त इस हालत में काटा जाए कि अभी वो जिंदा हो तो वो मुर्दार है, वो गोश्त खाना जो है वो जायज नहीं है, वो फिर हराम हो जाता है। तो कब खा सकते हैं? जब जानवर जो है वो जिबा होने के बाद जो है वो तड़पना बंद कर दे, बिल्कुल जो है वो तड़प तड़प कर जो है वो बिल्कुल आराम से जो है वो हो जाए। तो बिल्कुल उसमें से जान निकल जाए, ठहर जाए, तड़पना बंद कर दे, जान पूरी तेरे निकल जाए, फिर खा सकते हैं। फकुलू मिन्हा, बस उसमें से खुद भी खाओ, वह अतएमुल क़ानिअ वल मुअतर, और उससे जो है उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं। क़ानिअ, क़ानिअ जो है इसके मानी है वो मोहताज फकीर जो लोगों से सवाल नहीं करता, अपनी गुर्बत के बावजूद अपनी जगह बैठ कर जो है वो बैठा हुआ है, अपनी जगह कनात किए हुए है वो गरीब। वल मोतर जो है मुफस्सरीन कहते हैं, मोतर जो है इसका रूट है ऐन तारा, इसके मानी है कि ऐसा शख्स जो जिसको कुछ मिलने की उम्मीद हो, खा वो जबान से सवाल करे या ना करे, यानी वो भी जो के अपनी हाजत को पेश कर दे, सवाली बन जाए, तो बगैर सवाल किए भी और सवाली भी, तो इनको जो है वो खिलाया जाए। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर जो है इससे ये बात पता चलती है कि खुद भी खाएं और गरीब और जो जरूरतमंद है उनको भी खिलाया जाए। तो जैसे बाज लोग ये समझते हैं कुर्बानी के गोश्त के बारे में कि जो है वो उसके तीन हिस्से जो है वो किए जाएं, तो आप देखें कि वो इस आयत से दलील देते हैं। नंबर एक, खुद खाएं। नंबर दो, वह अतमुल कानिया के जो कनात किए बैठे हैं, यानी सवाल तो नहीं कर रहे तो कनात के बैठे हैं, बाज लोग कहते हैं इससे मुराद फिर मुलाकाती भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तीसरा, सवाली हैं, मुआशरे के जरूरतमंद लोग हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मैंने तुम्हें पहले 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त जखीरा करने से मना किया था, लेकिन अब तुम्हें इजाजत है, खाओ और जो मुनासिब समझो जखीरा करो। एक और मौके पर फरमाया, पस खाओ, जखीरा करो और सदका करो। फिर बुखारी की रवायत है, पस खाओ, खिलाओ और सदका करो। तो जो है वो कुर्बानी का गोश्त जो है, अगर किसी की फैमिली बहुत बड़ी हो तो ये भी राय है कि वो खुद भी खा सकते हैं, और पूरा भी किसी को दिया जा सकता है, यानी पूरा भी अल्लाह के रास्ते में उसको जो है वो दिया जा सकता है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि जो है वो खुद भी खा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुर्बानी का जो गोश्त है उसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन असल बात क्या है कुर्बानी के सिलसिले में, कि कुर्बानी जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नते मुअक्कदा है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीने में हर साल 10 जुलहिज को कुर्बानी करते रहे और मुसलमानों को भी कुर्बानी की ताकीद करते रहे। तो कुर्बानी के बारे में सूरत कौसर में भी है ना, फसल रब्बी का वनहर। तो इसी तरह जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में ये भी कहा कि 10 जुलहज को हम सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जाकर जानवर जिबा करेंगे, और अगर कोई नमाज ईद से पहले अपनी कुर्बानी कर ले तो इसने गोश्त खाने में जल्दी की, इसकी कुर्बानी नहीं हुई। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अच्छा, बाज लोग अब ये भी समझते हैं कि कुर्बानी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, तो याद रखें कि ये बात जो है ये जायज नहीं है। कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है और ईद के दिन ये अफजल इबादत है, और कुर्बानी जो है करनी चाहिए, और जो कुर्बानी करने की नियत रखता हो तो जुलहज का चांद देखने के बाद वो नाखून ना तराशे और बाल ना काटे। अब यहाँ पे कुर्बानी की रूह बताई जा रही है कि लन यनालल्लाहु, कि अल्लाह को हरगिज नहीं पहुंचता लुहूमुहा, उनका गोश्त। लाम हामीम, लहम का लफ्ज जो है ये गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लुहूम उसकी जमा है। तो अल्लाह ताला को जो है वो उसका कुर्बानी का जो है वो गोश्त नहीं पहुंचता। वला दिमाउहा, दाल भी वो रूट है और खून के लिए आता है, और कुर्बानी के जानवर का खून भी नहीं पहुंचता। वलकिन यनालहु तक्वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह को पहुंचता है उसका तक्वा तुम में से। तो नून या लाम नईल जो है ये पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्लाह को तुम्हारा तक्वा पहुंचता है। तो अहले मक्का क्या करते थे, बुतों की कुर्बानी का गोश्त, यानी बुतों के लिए कुर्बानी करते और जानवरों का गोश्त जो था वो बुतों पर जाकर चढ़ाते, और जो खून था वो खाना काबा की दीवारों के साथ लगा देते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि असल चीज जो है तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा इखलास है, खून और गोश्त तो यही रह जाएगा, तो अल्लाह ताला को क्या पहुंचेगा, کہ تمہاری نیت کیا تھی. اتقوی منکم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار کا بکرا لیا اور ہم نے اتنے $100 کا جو ہے وہ بکرا لیا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی قربانیاں کی ہیں, کتنی بڑی بڑی کی ہیں. تو اصل روح یہ کہ کیا آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے, کیا اللہ کی رضا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے بکرے سے بڑا ہمارا بکرا ہے, آپ نے ایک کیا ہم نے تو پوری گائے کر دی, سات تھی ہم, اور ہمارے تو اتنی کی جاتی ہے, اور ہم تو ایک انڈیا میں بھی کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, وہاں بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا تقوی. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. تو اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. تو یہاں پہ قربانی کی جو ہے وہ غرض بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی برتری کو مانو اور پھر اللہ کی برتری کا اعلان کر دو کہ یہ جانور اللہ نے دیے ہیں, اللہ ان کا مالک ہے, ہم دل سے اعتراف کرتے ہیں, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور جب جانور قربان کیے جائیں تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھے کہ اللہ تیرے دین کے لیے اور تیرے لیے جب اور جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو بھی قربان کر دیں گے. تو قربانی جو ہے وہ ہمیں کیا یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز کی قربانی کریں گے. پھر فرمایا بشیر المحسنین, اور بشارت دے دو احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کو. تو یہ آیت نمبر جو 37 ہے اس میں احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں کو جو ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے. تو احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے کون ہیں؟ جو مخبتین ہیں, جو متقی ہیں, جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. تو پیاری بہنوں, جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا کردار اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد ہم سب کے سامنے رکھے گئے, اور ساتھ ہی یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ توحید پرست تھے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ توحید جو ہے اس کو اپنانا چاہیے, شرک کی جڑیں کاٹنی چاہیے, اور جو ہے وہ قول الزور سے اور شرک سے بچنا چاہیے, اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ مستانہ جو ہے اپنی زندگی کا اصول بنانا چاہیے کہ مجھے, میں اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ تیرے احکامات ان کی اطاعت کے لیے میں حاضر ہوں, اے اللہ میں کمزور ہوں اور میں جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں میرے جو بھی حالات ہیں, اور اے اللہ تیرے جو احکامات ہیں ان کے آگے میں سر اطاعت جو ہے وہ خم کرتی ہوں, اور اے اللہ میں اپنی زندگی کے یہ دن, اپنی یہ جوانی, اپنے یہ پیسے, اپنا یہ گھر, اپنی یہ گاڑی, اپنے یہ بچے, میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے, اور اے اللہ میں ان پر تیرے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنا چاہتی ہوں. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ تمہیں دکھایا ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, یعنی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہو, اور بتوں کے لیے قربانی کرنا اور انسانوں کے لیے پیروں کے نام پر کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو پھر جو ہے, اور بعض لوگ جیسے آج قربانی کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ بس پیسے ہی صدقہ کر دیں گے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کی سنت کو جو ہے وہ مردہ کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج اتنے پیسے جو ہے وہ قربانی پر ضائع کیے جاتے ہیں, ویسے کسی غریب کی مدد کر دی جائے, تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر. تو قربانی سنت موقعہ ہے, اور قربانی جو ہے یہ عید کے دن کا افضل عمل ہے اور اللہ کی خاطر کی جائے. تو یہ ہیں احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے, اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا کی ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, اور جو ہے وہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ نے بشارت دی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.